उपस्थित महानुभाव सत्संगी प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, संत वाणी में अभी हम लोगों ने प्रश्न भी सुना और उत्तर भी। प्रश्न क्या किया गया था उनसे कि पथ प्रदर्शन कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए अथवा जीवन की राह दिखलाइए। तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि चलने की रुचि में मार्ग दिखाई देता है, अर्थात जो वास्तविक जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता अनुभव करता है, उसे स्वतः ही राह दिखाई देती है। ऐसा उत्तर स्वामी जी महाराज ने दिया। स्वर्गीय मैत्री शरण गुप्त जी ने प्रश्न किया था, महाराज जी ने उत्तर दिया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि चलने की रुचि है और मार्ग दिखाई देता है, चल नहीं पाते हैं। तो ऐसी दशा हम सभी भाई बहनों में से बहुतों की है। शांति, मुक्ति, भक्ति की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता अपने को है कि नहीं है? जी है। और कैसे आगे बढ़ेंगे, उपाय मालूम है कि नहीं? जी उपाय भी मालूम है। हां कहने में कोई संकोच की बात नहीं है। हम लोगों में से किसी से भी पूछा जाए कि भाई शांति कैसे मिलेगी, तो बहुत सहज से हम सब कह सकेंगे कि कामनाओं के त्याग से शांति मिलती है। कामनाओं के त्याग से शांति मिलती है, यह बात हम लोगों को मालूम है कि नहीं है? मालूम है। तो स्वामी जी महाराज के सामने ये प्रश्न रखा गया कि चलने की आवश्यकता भी है और राह भी दिखाई देती है और चल नहीं पाते हैं, चला नहीं जाता है। ऐसे ऐसे हम लोग कहते हैं कि क्या बताएं, बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा तो हम जानते हैं, परंतु मुझसे बुराइयों को छोड़ा नहीं जाता है। तो ऐसे ही वहां भी कह दिया लोगों ने कि क्या बताएं, आवश्यकता भी है, मार्ग भी दिखाई देता है और चला नहीं जाता है, चल नहीं पाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि न चल सकने की वेदना में चलने की शक्ति आ जाती है। ये भी बहुत अच्छी बात है, न चल सकने की वेदना में। क्या बताएं, बुराई जीवन में दिखाई देती है और देखकर बहुत ही कष्ट होता है अपने को, और मैं तो सब प्रकार से बुराई रहित होना चाहती हूँ, लेकिन हमसे बुराई छोड़ी नहीं जाती। तो बुराई रहित न होने का जो कष्ट होता है, उस कष्ट से बुराई रहित होने की शक्ति आ जाती है। इसी बात को प्रायः प्रत्येक समारोह के समय कई कई तरह की शब्दावलियों में हम लोग प्रकट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, विवेचन करते रहते हैं। बात ये बिल्कुल सही है। और ऐसा क्यों संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके संबंध में मनुष्य के जीवन पर विचार करने से संत की वाणी को सुनने से यह मालूम हो गया कि कोई भी मनुष्य जब पतन के रास्ते को छोड़कर उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहता है और उसमें अपने को असमर्थ पा करके असमर्थता की पीड़ा से पीड़ित होता है, तो उन्नति की ओर जाने वाले की पीड़ा सर्वसमर्थ प्रभु से सही नहीं जाती। ऐसा होता है, वो नहीं सह सकते हैं। तो क्या होता है, तो उनके पास तो अनंत सामर्थ्य है, जितना चाहिए उतना दे देते हैं, जितना बल लेकर के आप आगे बढ़ सकेंगे उतना बल परमात्मा दे देते हैं, तो उनके पास सामर्थ्य की कमी भी नहीं है और उनके पास उदारता की भी कमी नहीं है, देने में भी कभी कंजूसी नहीं करते, हिसाब नहीं करते, जितना जिस साधक को चाहिए बिना मांगे बड़ी उदारता से अनंत परमात्मा दे दिया करते हैं। इसी बात को महाराज जी ने हम लोगों को इन शब्दों में कहा कि भाई चलने की आवश्यकता महसूस करो तो राह दिखाई दे जाएगी, और राह पर चलने की असमर्थता है तो उस असमर्थता से पीड़ित हो जाओगे कि मैं क्या बताऊं, सत्य का रास्ता दिख तो रहा है परंतु मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस बात की बड़ी पीड़ा हो जाए तो उस पीड़ा से सामर्थ्य की वृद्धि हो जाती है। यह मानव जीवन का मंगलमय विधान है, यह मानव जीवन के मंगलकारी रचयिता की मंगलकारिता है कि उन्नति के पथ पर जाने में किसी को परमात्मा असमर्थ दशा में छोड़ नहीं देते हैं, उसे अपनी ओर से बिना मांगे सामर्थ्य देते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि सामर्थ्य दे करके साधक को आगे बढ़ा देते हैं, और कई बार मुझे ऐसा लगा कि स्वयं ही उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं, अपने आप भी कर देते हैं, बल मिल गया और मैंने कर लिया, ऐसा भी होता है, और असमर्थता से व्याकुल हूँ और सामर्थ्यवान ने हमारे संकट दूर कर दिया, ऐसा भी होता है। दोनों ही तरह की बातें होती हैं। हमेशा साधक के जीवन में इस बात का बहुत ही दृढ़ निश्चय अपने में रहना चाहिए कि साधना के पथ पर किसी भी स्तर पर जाकर के यदि हमें असमर्थता की पीड़ा होगी तो सामर्थ्यवान हमेशा ही मदद दे करके पार लगा देते हैं, बीच रास्ते में कोई नहीं रहता है। महात्मा गांधी आज के युग के बड़े अच्छे साधक थे, उन्होंने अपने जीवन को साधना में साधा और अपने अनुभव के आधार पर एक ग्रंथ में लिखा है, बहुत छोटी सी किताब है, 1929-30 में जब नमक आंदोलन आरंभ हुआ था तो उसके बाद जब जेल में थे तो प्रत्येक मंगलवार को एक संदेश देशवासियों को और आश्रमवासियों को भेजते थे, तो वो सारा संग्रह करके मंगल प्रभात के नाम से प्रकाशित है, छोटी सी किताब है, तो उसमें साधना के एक एक खंड को लेकर के उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल विवेचन उसमें लिखा है। तो उसी में एक जगह पर लिखा है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी साधक अंत काल तक गलत रास्ते नहीं गया, ऐसा उन्होंने लिखा है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कोई भी साधक अंत समय तक गलत रास्ते नहीं गया। जरा सी गलती हुई कि ठोकर लगती है, चेतना आती है और साधक सही रास्ते पर आ जाता है। तो ये भी उसी तरह की चीज है कि हमको अगर किसी प्रकार का भ्रम रह गया है, किसी प्रकार की असमर्थता रह गई है, अपने को पता नहीं चल रहा है, तो वो जो नित्य निरंतर विद्यमान रहने वाला सत्य हरेक साधक के भीतर सब समय विद्यमान है, वो देखता रहता है कि हम लोगों की दशा क्या हो रही है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। इस बात का पूरा पूरा ज्ञान उन परमात्मा को रहता है और वे सब समय साधकों के जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा में सचेष्ट रहते हैं हमेशा। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस बात में बहुत निश्चिंत रहना चाहिए कि मेरी सामर्थ्य घट जाएगी तब भी मैं बीच रास्ते में नहीं रहूंगा। बहुत बढ़िया बात है। अरे अपनी ही पूंजी से काम चलाना हो तो आदमी सोचे कि मेरे पास कितनी है और जितना घटेगा उतना उदार दाता देने के लिए सब समय तैयार है, तो फिर क्या चिंता है? कोई चिंता की बात नहीं, अवश्य ही बेड़ा पार होगा ऐसा निश्चय ले करके साधन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी दुर्बलता को देख करके हिचकना नहीं चाहिए कि क्या बताएं, हमारे में तो दम ही नहीं है, हम कैसे बढ़ें, सो नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब असफलता और असमर्थता की पीड़ा भी हम लोगों को महंगी पड़ जाए, ऐसा भी तो होता है। सफलता मिली भी नहीं और असफलता की गहरी वेदना भी नहीं, तो ठीक है, सत्संग में बैठते तो है ही है, कमाई का कुछ हिस्सा दान में लगा दिया, शरीर का कुछ बल समाज की सेवा में लगा दिया, अच्छी तरह से दिन कट रहे हैं, सत्य से अभिन्नता नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, परमात्मा से भेंट मुलाकात नहीं हुई तो कोई चिंता नहीं है, देखा जाएगा आगे कभी कर लेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ यह है कि सत्संगी होते हुए भी, साधन किसी न किसी रूप में करते हुए भी, अपने लोगों में साध्य से अभिन्न होने की तीव्र लगन नहीं है, यह अर्थ निकला। एक घटना जैसे मैं आप लोगों को सुनाया करती हूं कभी कभी, हमारी बहन बच्चे को लेकर के बाहर चले जाओ, समझाओ भाई इनको, बाहर ले जाओ, समझ में नहीं आता है, बाहर बाहर ले जाओ, तो अपने लोगों को सत्य की ओर आगे बढ़ने में अथवा चिंता तथा भय से मुक्त होने में, सर्वांश में मुक्त होने में अगर देर लगती है, तो देर जो लग रही है उसको हम लोग सहन क्यों कर रहे हैं? ऐसा सोच करके देखो, अगर सहन नहीं होता, हर प्रकार से आदमी अधीर हो उठता, हे परमात्मा अब आपसे मिले बिना तो हमसे किसी प्रकार रहा नहीं जाता, तो इस प्रकार की अधीरता भी अपने को महंगी पड़ रही है, ऐसी अधीरता भी नहीं आई। स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे कि तीव्र प्यास लगी है और हाथ में ग्लास में भरा हुआ जल भी है, और जब सत्य से अभिन्न होने की तीव्र आवश्यकता जागृत होती है तो पानी पिया नहीं जाता। हाथ में जल है और प्यास से कंठ सूख रहा है, लेकिन साधक पानी को पी नहीं पाता है। क्या लगता है उसको कि प्रभु से मिलेंगे पहले और जल पिएंगे पीछे। तो इसको वे सिद्धांत के रूप में कहते थे, लेकिन थी उनके अपने जीवन की बात। कभी कभी व्यक्तिगत सत्संग के सिलसिले में उन्होंने कह दिया कि मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर एक दो मिनट का समय मैंने जल पीने में लगा दिया तो जल पीते पीते कहीं प्राण पखेरु उड़ गए तो परमात्मा से मिलने का प्रोग्राम तो बाकी रह जाएगा। इसलिए प्यास लगी है और हाथ में जल है और पीते नहीं थे, पकड़े बैठे रहते थे और भीतर में गहरी व्याकुलता रह रह के उमड़ रही है। क्या कि पहले मिलना जरूरी है, पहले प्रभु से मिले पीछे जल पिए। तो ऐसा होता है साधकों के जीवन में, इस तरह का एक पॉइंट आता है जबकि करणीय कुछ भी शेष नहीं है। अपने को जो जो करना था मैंने सब कर लिया, अब सब प्रयास अप्रयास में विलीन हो गए। फिर भी अगर उनसे परमात्मा से अभिन्न होने का आनंद नहीं आया तो साधक एकदम से तड़प उठता है कि अब तो हम किसी प्रकार आपसे मिले बिना रह ही नहीं सकते। जब ऐसी उसकी लगन लग जाती है, ऐसी धुन लग जाती है, तो कब उसकी लगन तीव्र हुई और कब उसमें प्रभु मिलन का आनंद आया ये पता नहीं चलता। तत्काल ऐसा ऐसे अद्भुत अद्भुत अनुभव साधकों को होते हैं कि जिनके संबंध में कुछ भी कहना सुनना वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसे अद्भुत अद्भुत अनुभव साधकों के होते हैं। जिन साधकों ने परमात्मा को मान करके अपनी साधना आरंभ की वे तो पुकारते ही रहते हैं। और महाराज जी गीता भवन की चर्चा है, वहां पर इस तरह की बातें बहुत होती थी। तो महाराज जी कभी कभी कहते कि देखो भाई, प्यास लगी है और जल नहीं मिल रहा है, तो जल न मिलने के कारण प्यासा आदमी भीतर से पानी की आवश्यकता महसूस करना बंद कर देगा। ये बंद तो नहीं करेगा, हाय पानी अगर मुंह से नहीं बोलेगा तो भीतर भीतर। राजस्थान में जैन संप्रदाय में एक प्रथा है कि शरीर छोड़ने के लिए वे लोग व्रत ले लेते हैं। क्या कहलाता है व्रत? संथारा। हाँ, तो संथारा व्रत ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं उसमें कि अन्न जल की अवग्रहण नहीं करेंगे। तो उसकी संख्या भी होती है, कोई तीन कोई चार कोई पांच, ऐसे लोग बता रहे थे। तो संथारा व्रत लिया हुआ एक आदमी जिसने सोच लिया था कि अब शरीर को त्याग कर ही देना चाहिए, अन्न जल नहीं लेना चाहिए, तो जैन संप्रदाय में संथारा लेकर के शरीर त्याग करने वाले की बड़ी महिमा है। बहुत प्रकार की उनके यहाँ प्रथा है जिससे व्यक्ति को इस प्रकार के तप करने में बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा खूब मैंने देखा है वहां। तो एक सज्जन ने लिया था संथारा और कई दिन बीत गए और जब उसके बाद उनको बड़ी गहरी प्यास लगी जल की, तो वो पुकारने लगे, जल चाहिए, जल चाहिए, जल चाहिए। तो लोग मुझको बता रहे थे कि उनके सगे संबंधी, कुटुंबी, हित मित्र, परिचित साधु संत सब मिलकर के चेष्टा यही करते हैं कि इस आदमी ने व्रत लिया है तो इसको जल न दिया जाए, ऐसी चेष्टा करते हैं। तो देते नहीं, समझाते रहेंगे उसको और समय काटते रहेंगे और चाहेंगे कि इस आदमी ने संथारा लिया है तो बिना जल लिए इसके शरीर का अंत हो ही जाना चाहिए। इसी प्रकार की मदद कुटुंबी जन भी करते हैं, हित मित्र भी करते हैं और उनके संगी साथी जो भी कोई हो सब करते हैं। तो लोग मुझे बता रहे थे, तुरंत ही उनका देहांत हुआ था, शायद एक ही दो दिन बीते थे तब मैं वहां पहुंची थी, तो मोहल्ले में बड़ी चर्चा थी इस बात की। तो महिलाएं मुझसे कहने लगी कि वे पानी पानी पुकारते रहे लेकिन उनको दिया नहीं गया। तो जो भी कोई उनसे मिलने जाए उनको धीरज देने के लिए अथवा व्रत पर दृढ़ रहने की बात याद दिलाने के लिए जो भी कोई जाए तो उसको देखे, और देखते ही पानी की इतनी तीव्र आवश्यकता उनके भीतर थी कि वो कहने लग जाए कि भाई जी आपके घर में तो जल की धारा बह रही है ना, जल की नदी बह रही है, उसमें बहुत जल है, जल ही जल है। क्या मतलब है कि आवश्यकता इतनी जबरदस्त थी कि उनके मस्तिष्क में मानसिक स्तर पर जल ही जल दिख रहा था और दूसरी कोई बात वो करते ही नहीं थे। जल है आपके घर के सामने तो गंगा बह रही है, आपके सामने, आपके घर के सामने तो जल का समुद्र लहरा रहा है, उसमें बहुत जल है, उसमें बहुत जल है, हाय मुझको जल चाहिए। बड़ा दुख लगा मुझे, दिल में बड़ा धक्का लगा, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं। हमने कहा कि भाई अपने अपने मजहब की बात है, जिसका जो हो सो। अभी मुझे याद आ गया, मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि स्वामी जी महाराज हम लोगों को कहा करते थे कि अरे भैया तुम्हारे में अगर अगर सब कुछ अपने ही पुरुषार्थ से कर सकने की सामर्थ्य नहीं है तो जीवन में से जिन बुराइयों को मिटा देना चाहते हो उन बुराइयों के रहते हुए तुमको चैन कैसे है? ये एक बात हो गई ना। फिर दूसरी बात क्या कहते कि जिस परमात्मा से मिलने की आवश्यकता है तुमको, उससे मिले बिना तुमसे रहा कैसे जाता है? और तब ये बात कहते कि भाई लगन तो ऐसी लगती है कि मान लो कि प्यासा आदमी तड़प रहा है प्यास से और उसको चारों ओर से निराश कर दिया जाए कि यहां कहीं भी जल नहीं है, आपको मिलेगा नहीं, तो ये कह देने के बाद भी उसके भीतर से पानी का चिंतन मिटेगा नहीं मिटेगा। फिर और कहते कि मान लो कि उसके सामने तुम हथियार लेके चले जाओ और जाकर के कहो कि खबरदार जो पानी का नाम लिया, अगर पानी का नाम लोगे तो गोली पर उड़ा देंगे। तो इस भय के देने के बाद भी वो हाय पानी करना बंद कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी आवश्यकता है। तो ऐसे ही होता है सत्य की अभिव्यक्ति में, परमात्मा से मिलने के लिए जब भीतर में तीव्र लगन जगती है तो उसको मना करो तो मुंह से बोलना बंद कर देगा, तो भीतर भीतर पुकारता रहेगा, भीतर भीतर पुकारता रहेगा। ऐसी दशा क्यों होती है? एक बार मैं बैठ करके उस दशा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि परमात्मा से मिलने के लिए जिस साधक ने जो कुछ करना था सब कर लिया, अब केवल साधन के फल के अभिमान का नाश करना बाकी रह गया है। अब ये काम तो परमात्मा करेंगे ना, अपनी ओर से तो मैंने ठान लिया कि हम किसी प्रकार का सुख नहीं लेंगे तो सुख लेना छोड़ दिया, कि हम निरंतर भगवत भजन करेंगे तो कर लिया, तो करने का था वो कर लिया, छोड़ने का था वो छोड़ लिया। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमारे और हमारे परम प्रेमास्पद के बीच में कुछ दूरी रह गई है, ऐसा लगता है साधक को। तो उतना हिस्सा कब मिटेगा? जब की हुई साधना के फल का अभिमान मिटेगा तब मिटेगा वो, तो उतना सा हिस्सा रह जाता है और फिर तो साधक व्याकुल होने लगता है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे करें, अब कैसे मिले। होते होते जिस समय उसे ऐसा सूझता है कि अब मेरे किए कुछ होगा नहीं, अब तो प्रभु स्वयं ही अपनाए तो काम बने, तो इतना घना आकर्षण, इतना जोरदार आकर्षण परमात्मा की ओर से उस साधक को अपनी ओर खींचने लगता है इतने जोर से कि साधक जो है वो किसी भी भय से अथवा किसी भी प्रलोभन से उस ओर खींचे बिना रुक नहीं सकता, ऐसा होता है। बड़ा तीव्र प्रवाह होता है उसमें, बड़ा तीव्र आकर्षण होता है उस खिंचाव में, और उस खिंचाव में भी इतना मिठास होता है कि उस मिठास में जन्म जन्मांतर की जो जितनी आसक्ति रही होगी संसार के सुख भोग की वो सब दुर्बल पड़ जाती है, और परमात्मा की ओर से जो जोरदार सच्चा आकर्षण है वो बलवान हो जाता है। इतना बलवान हो जाता है कि किए कराए पुराने जन्म जन्मांतर के सब विकार मिट जाते हैं, सब आसक्तियां छूट जाती हैं, सब की विस्मृति हो जाती है, और साधक के जब तीव्र व्याकुल हो जाता है तो उसके अहम का भी नाश हो जाता है, साधन के फल का अभिमान भी खत्म हो जाता है, और अभिमान खत्म हुआ नहीं कि सत्य से अभिन्न होने का अनुभव हुआ, केवल इतनी सी बात शेष रह जाती है तो ये काम पूरा हो जाता है। तो आज इस संध्या काल में अपने लोगों को अपनी दशा पर थोड़ा विचार करना है। यहां से उठने के बाद जब बोलना और सुनना बंद हो जाए और जब और दूसरे आवश्यक कार्य भी आपके पूरे हो जाएं, तो अकेले बैठ करके थोड़ा सा विचार करके देखिए कि सत्य के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हुए कितना समय बीता। अपने को मालूम तो है ना, पता तो है ही है, तो एक बार इसको देखिए, फिर ऐसा सोचिए कि मैंने अपनी ओर से प्रयास करके अपने जीवन को कितना ऊंचा उठाया, ये भी देख लो। फिर ये भी देख लो कि यह सब करते हुए भी सत्य से अभिन्न होने का जो आनंद है, वह आनंद अगर अब तक नहीं आया और अपने को लगता है कि मैं रास्ते में हूं, अभी घर नहीं पहुंचा ऐसा लगता है, तो घर न पहुंचने की पीड़ा अपने को क्यों नहीं है, ऐसा सोचिए। तो आप सभी भाई बहनों को अलग अलग उत्तर मिलेगा, और आज मैं उत्तर नहीं दूंगी। हम सब लोग अलग अलग बैठ करके अकेले अकेले आज रात्रि में अपने से पूछें कि अगर परमात्मा के मिलने का आनंद मुझे नहीं आया, कि सत्य से अभिन्न होने का आनंद अपने को नहीं मिला, तो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक कार्य है वो ही पूरा नहीं हुआ, तो उसके पूरा न होने का दुख अपने को कितना है, ये भी देख लो। क्योंकि और कोई उपाय चाहिए नहीं, केवल पीड़ा के तीव्र होने की बात है। तो इतनी तीव्र हो जाए कि और कुछ न सुहाए, अपने को काम बन गया। तो ऐसा सोच करके देखिएगा, और कल प्रातः काल की बैठक में इस संबंध में हम लोग और बातचीत करेंगे। जो प्रश्न सूझे सो प्रश्न लिख के ले आना, जो उत्तर सूझे छोटे छोटे वाक्यों में, लंबा लंबा नहीं, तो उत्तर लिख के ले आना। तो इस विषय में हम लोग और बातचीत करेंगे। कहां से ऐसी शिथिलता जीवन में आ गई, कौन सी ऐसी जड़ता जीवन में छा गई है कि जीवन के लक्ष्य को भी हम लोग जानते हैं, लक्ष्य पूर्ति के रास्ते को भी जानते हैं, थोड़ा बहुत चलते भी हैं, और न पहुंचने की पीड़ा भी नहीं है। ऐसी जड़ता क्या हो सकती है जीवन में, इसके संबंध में थोड़ा सोच विचार करने से अच्छा रहेगा। सुनाने के लिए तो मैं दो चार बातें सुना दे सकती हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अपना हाल मुझको मालूम है, तो मैं सुना दे सकती हूँ। लेकिन मेरे सुना देने से आपको उतना लाभ नहीं होगा, और अकेले बैठकर अपने बारे में स्वयं सोचिएगा, और आपके जीवन की दशा स्वयं आपकी समझ में आएगी, तो उससे आप भाई बहनों को विशेष लाभ होगा। इसलिए मैं नहीं सुना रही हूँ, कल सवेरे की बैठक में हम लोग इसके संबंध में बात करेंगे। अब इस समय की जो वार्ता है वो अब मैं पूरा करने जा रही हूँ, यह कह करके कि संत जनों का जो अनुभव है वह बिल्कुल पक्का है, सत्य है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और प्रत्येक अनुभवी संत ने हम लोगों को यह बताया कि भाई सूर्य का प्रकाश और अंधकार का नाश एकदम एक साथ होता है। पता नहीं चलता है कि कब सूर्य का उदय हुआ और उसके बाद कब अंधकार का नाश हुआ। ऐसा कभी आप अनुभव करते हैं, या ऐसा कोई मौका आपको मिलता है कहने का कि ठीक ठीक अब तो सूर्योदय हो गया है, अब थोड़ी देर में अंधकार चला जाएगा। ऐसा मौका नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि जैसे जैसे सूर्योदय होता जाता है साथ ही साथ अंधकार मिटता जाता है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में ईश्वर मिलन की लगन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ईश्वर और उनके भक्तों के बीच की जो दूरी है वो ऐसे ही मिटती जाती है जैसे सूर्योदय के साथ साथ अंधकार का नाश होना एकदम साथ ही साथ हो जाता है। आगे पीछे नहीं होता, देर नहीं लगती है, पता नहीं चलता है अपने को कब क्या हो रहा था और कब क्या हो गया। सो बड़ा ही अद्भुत चमत्कार पूर्ण परिवर्तन मनुष्य के अहम रूपी अणु में होता है। और अब मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि सारी पढ़ाई लिखाई हुई और समाज में बड़ी धूमधाम मचाई गई और बहुत धन कमाया गया और बहुत दल जोड़ा गया, बहुत कुछ किया गया, आदमी को परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दी है कि छोटी सी जिंदगी में अल्प सामर्थ्य को लेकर के ही बहुत कुछ करता रहता है और बहुत कुछ करने को सोचता रहता है, लेकिन सब कुछ हुआ तो क्या हुआ। यदि शरीरों की आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो जन्म मरण का चक्र नहीं खत्म होगा तो कुछ नहीं हुआ। यदि सर्वाधार परमात्मा जो सब प्राणियों के जीवन का आधार है उसका आधार ले करके हम सदा सदा के लिए निश्चिंत और निर्भय नहीं हो सके तो क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। और कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है जब मैं सोचती हूँ कि कितना करेगा एक आदमी अपनी जिंदगी में, कितना करेगा। आदमी के किए संसार का कोई काम पूरा हो जाता है ऐसा तो संभव है नहीं। करते जाओ करते जाओ करते जाओ और अंत में बहुत कुछ करने को शेष रह जाता है जी, रहता है कि नहीं? रहता ही है। तो कभी कभी मुझे अच्छा लगता है यह सोच करके कि आदमी की शक्ति तो बहुत ही सीमित है, लेकिन सीमित व्यक्तियों के द्वारा जो विराट संसार का काम कराने वाला परमात्मा है उसकी शक्ति असीम है। तो क्या हुआ अगर मेरा शरीर नाश हो गया, अगर मेरी मृत्यु हो गई, मैंने अधूरा काम छोड़ दिया तो काम अधूरा थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा। एक एक आदमी की जगह पर वह सामर्थ्यवान वह सृष्टिकर्ता 10 आदमी को खड़ा कर दे सकता है जो कि उस काम को पूरा कर दे। तो संसार के काम को पूरा करने का प्रश्न नहीं है, अपने जीवन में काम रहित होने का प्रश्न है। दुनिया का काम खत्म होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, दुनिया का मालिक तो है ही है। थोड़ा बहुत हम जो करते हैं तो करते हैं, बाकी तो वो सब अपने संभालते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, कराते ही रहते हैं। कभी कभी कोई कोई बहुत मदद करने वाले साधक आ जाते और बहुत अच्छी तरह से काम होता तो कोई कोई पूछते मुझसे कि अच्छा ये साधक आपके यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ये काम कौन करेगा। तो मैं याद दिला देती, मैं कह देती कि जिसने इनको भेजा था वो कहीं थोड़े चला जाएगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा। जिसने इनको भेजा था मेरा ये काम संभालने के लिए वो एक की जगह पर 10 भेज सकता है, तो मैं क्यों सोचूं कि इनके चले जाने के बाद क्या होगा। अगर आदमी का किया हुआ हो तो आदमी सोचे, तो कराने वाला तो हर समय मौजूद है और उसकी सामर्थ्य की भी कभी कहीं कमी नहीं होती। तो प्रश्न अपने लोगों के सामने क्या है, तो प्रश्न ये नहीं है कि मैंने संसार का बड़ा बड़ा काम कर दिया और मैंने जो काम हाथ में उठाया उसको पूरा कर दिया, ये सब तो बिल्कुल बकवास की बातें हैं। वो तो उसके मंगलमय विधान से जो भी कुछ हो जाए तो बढ़िया। और मुझको किसी प्रकार से अपनी समष्टि श्रृंखला के चलाने में मुझको एक कड़ी बना करके वो सृष्टिकर्ता कहीं पर फिट कर ले तो मेरा सौभाग्य, ऐसा मैं मानती हूँ। उसकी विशेषता नहीं है, विशेषता ये है कि छोटा सा काम करने को मिला है आपको, चाहे बड़ा सा काम करने को मिला, जो करने को मिला सो करके आप स्वयं राग रहित हो गए कि नहीं। जीवन में से आसक्ति का नाश हो गया कि नहीं, सत्य से अभिन्नता हो गई कि नहीं, फिर शांति की अभिव्यक्ति हो गई कि नहीं, अथवा भगवत विश्वासी हैं तो प्रभु मिलन में अनंत प्रेम के आदान प्रदान का प्रोग्राम पूरा हुआ कि नहीं, ये सोचने की बात है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो भी कोई काम सामने आता है, कोई साधक जरा दिल खोल करके काम करने वाला होता है, स्वभाव होता है किसी किसी का, परिश्रम करना किसी किसी को प्रिय लगता है, तो उसके आगे ज्यादा काम आता रहता है। और कोई कोई शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी धीरे धीरे काम करने वाला होता है, तो उसके पास कुछ कम काम आता है। तो जितना भी काम हम लोगों के सामने आवे और जितनी भी अपनी सामर्थ्य हो करने की, उस संपूर्ण दैनिक रूटीन को और सारे कार्यक्रम को कहाँ फिट करना चाहिए, तो अपनी साधना के रूप में उस साध्य की अभिव्यक्ति के मामले में उसको फिट करना चाहिए। काम शुरू करने जाओ तो एक बार सोच करके चलो कि भाई ये काम तो मुझे इसलिए करना है कि करने का राग मेरा निवृत्त हो जाए और मैं शांति में रह सकूं। काम खत्म हो जाए, विश्राम के लिए हम लोग जाएं, तो फिर इस बात को याद करके हटे वहां से, तो लाभ का लोभ और हानि का भय और कर्तापन का अभिमान और समाज का सम्मान, ये सब बीमारी हमारी छूट जाएगी। लाभ का लोभ भी छूट जाएगा, हानि का भय भी छूट जाएगा, कर्तापन का अभिमान भी छूट जाएगा, समाज के दिए हुए सम्मान का रोग भी छूट जाएगा। किसके छूट जाएगा? जो लक्ष्य को सब समय दृष्टि में रख करके काम करने चलेगा, उसका सब छूट जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को तो दफ्तर में बैठ करके पदाधिकारी बना दिया गया, वो तो वहां से हुकूमत चलाने लग गया, और मुझको तो झाड़ू लगाने का काम दे दिया गया, ये तो छोटा काम है, तो कोई बड़ा काम कर रहा है तो हम भी बड़ा काम करेंगे, छोटा काम क्यों करें। तो ये साधक की दृष्टि नहीं है। हो सकता है कि दफ्तर में बैठ करके ऑर्डर देने वाला बंधन में रह जाए और निराभिमानता पूर्वक झाड़ू लगाने वाला पार कर जाए, ऐसा हो सकता है। तो परिवार में कुटुंब में रह करके काम करते हैं तो क्या, और समाज में काम करते हैं तो क्या, या संस्था में काम करते हैं तो क्या। काम छोटा बड़ा नहीं होता है साधक की दृष्टि से, और काम को पूरा करने का प्रश्न उसकी जिम्मेदारी अपनी नहीं, भाग नहीं लेना चाहिए। देखना चाहिए ये कि किसी भी प्रकार से इतनी लगन से करो, इतने ज्ञान पूर्वक करो, इतने प्रेम पूर्वक करो कि करने का राग खत्म हो जाए और लक्ष्य से अभिन्न होने की आवश्यकता तीव्र हो जाए। आवश्यकता क्यों नहीं बढ़ी, तीव्रता क्यों नहीं आई, सत्य से अभिन्न नहीं हो सके तो इसकी पीड़ा क्यों नहीं बढ़ी, ऐसा सोचते रहो, कारण भी दिखाई देगा, निवारण भी होगा और काम बन जाएगा। अब समय पूरा हो गया, अब शांत हो जाएगा।